jestem pokaż by dla koga czehra chand ka saf hoga jistan aakash beda hoga chehra chand ka saf hoga jistan samay ne aankhe kholi insaf 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 hoga
जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी दे दी चुनौती सिंधु को फिर धार किया मछधार किया जब छोड़ दी सुख कामना आरंभ कर दी साधना संघर्ष पथ पर बढ़ चले फिर फूल क्या अंगार क्या कह मृत्यु को वरदान ही मरना लिया जब ठान ही जब आ गए रणभूमि में फिर जीत क्या फिर हार क्या संसार का पी पी गरल जब कर लिया मन को सरल तपस्वी शंकर हो गए फिर राग क्या श्रृंगार क्या साधना का पथ है और एक बार जो निर्णय ले लिया वो ले लिया एक बार संकल्प कर लिया सो कर लिया महान आत्माएं एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं जो सोच लिया जो ठान लिया वही अंतिम और इसी पथ पर आगे बढ़ते चलो न रुकना है न मुड़ना है न झुकना है न थकना है क्या करते जाना है आगे बढ़ते जाना है फिर जो होगा सो होगा अव्यक्त वाणी 25th November 1995। अच्छा टीचर्स सभी खुश हैं? देखो मुरली तो नयों के हिसाब से हुई है, लेकिन बाप दादा को डायमंड जुबली में सभी से मुक्त करना ही है। नहीं करेंगे तो धर्मराज बनेंगे। अभी तो प्यार से कह रहे हैं, फिर धर्मराज का साथ लेना पड़ेगा ना। लेकिन क्यों ले, क्यों नहीं बाप के रूप से ही सब मुक्त हो जाए? पुराने पुराने सोचते हैं कि बाप दादा ऐसा कुछ करे ना तो सब ठीक हो जाए, लेकिन बाप नहीं चाहते। बाप को धर्मराज का साथ लेना पसंद नहीं है। कर क्या नहीं सकता, एक सेकंड में किसी को भी अंदर ही अंदर सजा दे सकता है, और वो सेकंड की सजा बहुत बहुत तेज होती है। लेकिन बाप दादा नहीं चाहते। बाप का रूप प्यारा है, धर्मराज साथी बना तो कुछ नहीं सुनेगा, इसलिए बाप दादा को डायमंड जुबली में सभी को सभी बातों से मुक्त करना ही है। तो भगवान कौन सा रूप धरेगा? धर्मराज का। और सजा दी जाएगी। कल हमने कुछ बातें देखी थी, ब्राह्मणों पर कुछ पेंडिंग केसेस भी है, 63 जन्मों के और वर्तमान के आरोप। कौन कौन से आरोप? तुम पर आत्मिक दृष्टि रखने के बजाय देहिक दृष्टि रखने का आरोप है। 5 विकारों के अंश वंश के वशीभूत होकर विकर्म करने का आरोप है। समय को सेवा में सफल नहीं कर इधर उधर व्यर्थ की बातों में गवाने का आरोप है। परचिंतन परदर्शन परमत प्रपंच में रहकर ब्राह्मण जीवन के महत्व को नहीं समझने का आरोप है। दूसरों को सुख देने के बजाय दुख देने का, कटु वचन बोलने का, टॉन्ट करने का, कसने का आरोप है। समय होते भी बाप को याद नहीं करने और सेवा नहीं करने का आरोप है। दूसरों का कल्याण करने के बजाय उनका अकल्याण करने का आरोप है। मुरली नहीं सुनने और ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करने का आरोप है। और जो टॉपिक दिया गया और भाषण समय टॉपिक को छोड़कर बाप की याद के बिना ब्रह्मा भोजन ग्रहण करने का आरोप है। ईश्वरीय मर्यादाओं से अनभिज्ञ होकर उनके अनुकूल नहीं चलने का आरोप है। कोई व्यक्ति है, यदि उसे लॉ का पता नहीं है और वो कोई आरोप करता है, गलती करता है, तो उसे मिस्टेक कहा जाता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति वो लॉ को जानता है और फिर कोई गलती करता है, भूल करता है, तो उसे मिस्टेक नहीं कहा जाता, उसे क्या कहा जाता? क्राइम। और क्राइम के लिए दंड दिया जाता है, ब्राह्मणों की दंड संहिता। ईश्वरीय यज्ञ की भिन्न भिन्न चीजें चोरी करने का आरोप है। साधना का समय छोड़कर साधनों के वश होकर समय को बर्बाद करने का आरोप है। रूहानी याद की यात्रा छोड़कर घूमने फिरने मौज मस्ती करने का आरोप है। नुमा शाम के योग का समय है और हम जा रहे हैं खेलने, घूमने फिरने, बातें करने, रात के भोजन की तैयारी करने। सर्व संबंधों से एक बाप को याद नहीं करने का आरोप है। स्वराज्य अधिकारी रहने के बजाय कर्मेंद्रियों के अधीन रहने का आरोप है। यज्ञ में दूसरों की उन्नति व पुरुषार्थ में बाधक बनने का आरोप है। वायुमंडल को मनसा वाचा कर्मणा अशुद्ध बनाने का आरोप है। जो सफल कर सकते थे वह सफल नहीं करने का आरोप है। दूसरों को बाप का परिचय नहीं देने का और बाप का नहीं बनाने का आरोप है। बाप के वर्षे से दूसरों को वंचित रखने का और स्वयं भी वंचित रहने का आरोप। ईश्वरीय वरदानों को समय पर कार्य में नहीं लगाने का आरोप। समय होते भी विश्व को सकाश नहीं देने का आरोप है। सकाश नहीं दिया। अपने घर को गीता पाठशाला बना सकते थे लेकिन नहीं बनाने का आरोप है। कुमार कुमारी होकर भी ईश्वरीय सेवा में मददगार नहीं बनने का आरोप। ईश्वरीय खजाना प्राप्त करने के बाद भी खुश नहीं रहने का आरोप। दुखी रहने का आरोप है। स्वयं को, स्वयं के और औरों के पापों को याद के बल से भस्म नहीं करने का आरोप। बार बार माया के विभिन्न रूपों के अधीन होने का आरोप। ईश्वरीय खजाना प्राप्त होने के बाद भी ये हो गया। सत टीचर द्वारा मिले होमवर्क को समय पर नहीं करने का आरोप। स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली एवं संपूर्ण निर्विकारी नहीं बनाने का गंभीर आरोप है। अमृत वेला उठकर बाप को याद नहीं करने का आरोप। देहधारी से प्यार करने का आरोप। कलियुगी क्षणिक सुख सुख की चाहना रखने का आरोप। ऐसे अनेक आरोपों से बचने के लिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो। साकार मुरली 29 मई 2018। 20 नाखूनों का जोर देकर भी बाप से वर्षा लेना है, नहीं तो बहुत पछताएंगे। तुम बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठेगा, साक्षात्कार कराएंगे। देखो तुमको कितना समझाते थे। कल की मुटली में था, समझा पर किया नहीं। उसको कहा जाता है अनाड़ी। तो आज भट्टी का 7वां दिन। एक बहुत बड़ा नॉवेलिस्ट साहित्यकार रशिया में हुआ, जिसका नाम था फ्योडर डोस्टोवेस्की, और उसने अपने जीवन की एक घटना का वर्णन किया है। 1849 रशिया में उस समय बहुत अत्याचार होते थे। जार था और एक दो वर्ग थे, ऊंच वर्ग नीच वर्ग। जो नीच वर्ग के लोग थे उन पर बहुत अत्याचार होते थे, और फ्योडर डोस्टोवेस्की उस समय 27 वर्ष का था, युवा, और उसने आंदोलनकारियों के साथ हाथ मिला लिया और विद्रोह किया सत्ता के खिलाफ, और उसे पकड़ लिया गया और उसे ऐसी जगह रखा गया, अंधेरी कोठरी में, जहां पर बिस्तर ठीक नहीं, भोजन ठीक नहीं। उस अंधेरी कोठरी में थोड़ा सा सूरज का प्रकाश मात्र आता था बस। 8 मास वो और उसके साथी सारे क्रांतिकारियों को वहां रखा गया। 8 मास तक फ्योडर वहां था, और अचानक एक दिन बेल बजती है, एक बग्गी आती है और उनको कहा जाता है उठो चलो उसमें बैठो। उनको लगता है कि हमको शायद छोड़ दिया गया है। उनके आंखों पर पट्टी बांध ली जाती है और उनको हाथ बंद और लेके जाते हैं। एक जगह पहुंचते हैं, पट्टी खोलते हैं, देखते हैं वहां अब इन सब को एक एक करके मार दिया जाने वाला है। गैलोज, उसके 2-3 मित्र और वो खुद खड़े हो जाते हैं, पीछे से हाथ बांध देते हैं पट्टी, और सोल्जर्स खड़े हो जाते बंदूक लेकर उनको मारने के लिए। और जब मारने ही वाले होते हैं उसी समय उसी पल एक संदेशवाहक घोड़े पर बैठकर आता है, जार। जार अर्थात राजा, राजा का संदेशवाहक, और एक पत्र देता है, और पत्र में लिखा है कि फ्योडर डोस्टोवेस्की और उसके जो साथी है उनको मुक्त कर दिया जाए। और फिर उनको छोड़ दिया जाता है। फिर से बैठते और कहीं और साइबेरिया में ले जाते, वहां से उनको मुक्त कर दिया जाता है। फ्योडर दोस्तोयेवस्की ने अपनी एक किताब द इडियट में इसी प्रसंग का वर्णन किया, और इस प्रसंग को किसी अपना एक कैरेक्टर है जो नॉवेल का, उस पर डाल दिया। और एक चीज उसने लिखी कि ये जब हो रहा था, जब मृत्यु सामने थी, तब मैं क्या सोच रहा था। When I look back on my past and think how much time I wasted on nothing, how much time has been lost in futilities, errors, laziness, incapacity to live, how little I appreciated it, how many times I sinned against my heart and soul, then my heart bleeds. Life is a gift. Life is happiness. Every moment, every minute can be eternity of happiness. वो सोचता है जब उस तरह से हम लोगों को अभी मारने ही वाले थे, तब अचानक मेरे मन में विचार आया कि मैंने अपने जीवन के कितने पल, कितने समय, कितना समय बर्बाद कर दिया, कितनी बार कितने सारे छोटे छोटे पाप कर दिए, और जीवन कितना क्षणिक है, और जीवन में मुझे क्या करना चाहिए था और क्या मैं कर दिया। वो पल ऐसा था कि बस अब मृत्यु सामने थी, कितना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया एरर्स में, मिस्टेक्स में, भूलों में, पापों में, लेजीनेस में, आलस्य में, अलबेलेपन में, इनकैपेसिटी टू लिव, हाउ लिटिल आई अप्रिशिएटेड इट, जीवन कितना महान है और मैंने उसको कितना कम समझा। उस किताब में पार्ट वन चैप्टर फाइव यही इवेंट वो उसका एक कैरेक्टर है उसमें डालता है, और वो व्यक्ति कहता है, व्हाट इफ आई डिडंट हैव टू डाई, आई वुड टर्न एवरी मिनट इनटू एज, नथिंग could be wasted, every minute would be accounted for. यदि आज अगर मृत्यु ना आ जाए, भगवान से प्रार्थना करता है वो कैरेक्टर, अगर आज मुझे मृत्यु ना दो तो मैं वादा करता हूं एक एक मिनट सफल करूंगा, बस ये मृत्यु रोक दो, मैं फिर मुझे एक अवसर दे दो, बस एक अवसर, एक अंतिम अवसर। अपराध हुए है, पाप तो हुए है, और पाप हुए हैं कब, ब्राह्मण बनने के बाद। पहले जो हुए उन्हें उनके लिए तो माफी दी जा सकती है, अज्ञानियों को माफी दी जा सकती है, परंतु ज्ञानी जो सारी आचार संहिता को जानते हैं, जो सारा न्याय विधान जानते हैं, लॉ को ब्रेक किया है, लॉ को ब्रेक किया तो दंड तो मिलेगा, इंसाफ 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 होगा। गर्दन पर है कर्ज लहू का, गर्दन देकर ही माफ होगा। इसलिए जो कुछ इस ब्राह्मण जीवन में किया है, कल भी कहा था, उसके लिए क्या कर लो, माफी मांग लेना, आधा माफ। आधा माफ अर्थात ये नहीं कि माफ, आधा माफ अर्थात जो सजा होगी उसकी पीड़ा, उसकी महसूस था थोड़ी कम होगी। तो बाबा कह रहे, धर्मराज साथी बना तो कुछ नहीं सुनेगा। अव्यक्त मुरली कब कह रहे, 95 में। कल हमने आरोप देखे, आज हम सजा देखेंगे, दंड। मनुस्मृति में मानव धर्म शास्त्र में दंड के विधान दिए हुए, किस किस प्रकार के दंड, वाक दंड, किसी को खाली सुनाया जाता है कि तुमने गलत किया, डांटा जाता है और छोड़ दिया जाता है, ये सबसे माइनर वाले। किसी को धीक दंड, सेंसर, रोक दिया जाता है, किसी को धन दंड, फाइन, ये अच्छा है, चलान। बाधा दंड, फिजिकल पनिशमेंट, या तो हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, या मृत्यु, या तो कोड़ों से मारा जाता है। ब्रांडिंग, बैनिशमेंट, या तो राज निकाला दे दिया जाता है, या तो देश निकाला, या तो इम्प्रिजनमेंट, कारागार में डाल दिया जाता है। अलग अलग प्रकार के दंड होते थे, बाधा दंड, धन दंड, धीक दंड, वाक दंड, या फिर कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, उसकी सारी जायदाद जब्त कर लिया जाती, पब्लिक ह्यूमिलिएशन, घोड़े पर गधे पर बिठा के उल्टा करके काला मुंह करके घुमाया जाता था। मुझे याद है जब हम सिक्स्थ स्टैंडर्ड में थे, हमारी हिंदी की किताब में एक चैप्टर था, उसके बाद वो कभी भी पढ़ने को नहीं मिला, ना कभी वो कहानी मिली कहीं, अगर मिले तो बताएं। उसका नाम था प्रतिक्रिया। उसमें तीन लोग होते हैं, तीनों ने चोरी की, तीनों पकड़े जाते हैं। राजा एक एक को बुलाता है, पहले को बुलाते हैं, राजा उसको देख कर कहता है, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने नहीं करना चाहिए था। वो जाता है, आत्महत्या कर लेता है। इतना ही कहा उसे, कुछ नहीं कहा जाता। दूसरे को बुलाते हैं, राजा उसे इतना डांटता है। वो जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है, सबके सामने मेरा अपमान हुआ। वो अपने एक कमरे में जाते अपने आप को बंद कर लेता है, निकलता नहीं बाहर। तीसरा को राजा कहता है, इसको गधे पर बिठाओ, उसका मुंह काला करो और उसको घुमाओ। और जब उसे घुमाते रहते हैं, वो हंसते रहते हैं, निर्लज्जम सदा सुखी। प्रतिक्रिया, आगे क्या था याद नहीं, बहुत साल हो गए। ये एक लेसन था। तो दंड अलग अलग प्रकार के होते हैं। मुरलियों में नरक का वर्णन आता है, मनुस्मृति में 21 प्रकार के नरक का वर्णन है, भागवत में 28 प्रकार के नरक का वर्णन है, अग्नि पुराण में 4 प्रकार के नरक का वर्णन है। उस नरक में सड़ोगे। गरुड़ पुराण में एक एक चैप्टर में दिया गया, ये करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो वो होगा, ऐसा करोगे तो वैसा होगा। ये सब क्यों था द्वापर से? क्योंकि पाप कर्म थोड़े कम हो जाए, लोग थोड़े डरे, इसलिए दंड। अगर व्यक्ति को डराया नहीं जाए तो क्या होता है, करता जाता है। पाप को रोकने की एक ये विधि है और अभी भी चल रही है। परंतु इतिहास में कुछ और भी चीजें देखी गई है। इंग्लैंड में 200 वर्ष पहले जब भी कोई चोर पकड़ा जाता था तो क्या करते थे, पब्लिक प्रोसिक्यूशन, पब्लिक के सामने उसे कोड़े मारे जाते थे और उसे देखने के लिए सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे। यह विधान था, पर इसमें गड़बड़ हो गई। वो जो लोग इकट्ठा होते थे वहां पे पॉकेट मार की संख्या बढ़ गई। एक क्राइम है, उसको रोकने के लिए क्या किया गया, लोगों के सामने, ताकि लोगों के मन में भय बैठे। परंतु वहां किसकी संख्या बढ़ गई, पॉकेट मार जो थे, पिक पॉकेट्स। एक क्राइम को रोकने के लिए जो कुछ करने गए उसमें और क्राइम। लाओत्से ने कहीं कहा है, द मोमेंट यू मेक अ न्यू लॉ, लॉ ब्रेकर्स आर क्रिएटेड। नए नए लॉ बनाओ तो क्या बनता है, नए नए लॉ ब्रेकर्स क्रिएट हो जाते हैं तुरंत, और मनुष्य का पतन होते ही जाता है। तो ब्राह्मणों के भी, और ये सारे इस भट्टी के दो ही लक्ष्य है, और पहला लक्ष्य है अपने बिल्कुल निस्वार्थ कर्म में अपराध को देखना, अपने अच्छाई में बुराई को देखना, अपने गुणों में अवगुणों को देखना, अपने ब्रह्मचर्य में काम वासना को देखना, अपने करुणा में क्रोध को देखना। आज कहा ना क्रोध के लिए शांति, आत्मिक दृष्टि, अपने अवगुणों को कैसे देखना, आंखें फाड़ फाड़ के देखना, तैनी दृष्टि से देखना, एकांत दृष्टि, अनेकांत दृष्टिकोण से देखना, हर तरीके से, हर तरफ से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, कहां दोष है, अपने दोषों को देखना, अपनी निर्दोष दृष्टि में दोष को ढूंढना, अपनी पॉजिटिविटी में निगेटिविटी को ढूंढना, अपने सरल स्वभाव में कुटिलता को ढूंढना, कपट को ढूंढना, अपने निर्विकारी जीवन में षड्यंत्रों को ढूंढना कि हम भी कुछ कम षड्यंत्रकारी नहीं है, निरंतर षड्यंत्र करते रहते हैं अंदर ही अंदर। अपनी विश्व कल्याणकारी वृत्ति में स्वार्थ छिपा हुआ है, मैं, मेरी महिमा हो, बाकियों का मुझे कुछ लेना देना नहीं, जो कुछ मैं कर रहा हूं किस लिए कर रहा हूं, मेरी महिमा के लिए कर रहा हूं बस। जहां मेरी महिमा हो वो स्थान मुझे अच्छा लगता है, जो लोग मेरी महिमा करते वो लोग मुझे अच्छे लगते, जो मेरी महिमा नहीं करते मेरी निंदा करते उनसे मैं दूर भागता हूं, वो मुझे अच्छे नहीं लगता, उनकी बातें अच्छी नहीं लगती है। सारा खेल मैं के इर्द गिर्द चल रहा है, अपनी महिमा में निंदा को ढूंढो। तो आरोप तो बहुत है, सजाएं कौन कौन सी है, अलग अलग प्रकार की सजा है। इस ब्राह्मण जीवन में ही वो सजा हमको मिलेगी, उसके लिए ब्राह्मण जीवन पूरा होने के लिए या संगम युग पूरा होने की आवश्यकता नहीं है, अभी इसी समय। और कौन कौन सी सजा है, बहुत सारी सजा है। सबसे पहली सजा अमृत वेला, आठ भागों में सजा को डिवाइड करते हैं, अमृत वेला, दूसरी मुरली, तीसरा भोजन, चौथा ट्रैफिक कंट्रोल, पांचवा कर्मयोग, छठवा नुमा शाम का योग, सातवा ज्ञान की चिटचाट, रात्रि चाट, आठ। ये एक वर्गीकरण है, ऐसे अलग अलग वर्गीकरण है, एक वर्गीकरण ये है। यदि ब्राह्मण जीवन में श्रीमत को तोड़ा, श्रीमत का उल्लंघन किया, सब कुछ जानते हुए सब कुछ समझते हुए पता है फिर भी, तो अमृत वेला मिस। एक अमृत वेला उठ भी गए, खुशी नहीं, थकान, नींद अमृत वेले के समय आंखें बंद होगी, ये क्या निशानी है, किसकी निशानी है? जरूर उसके पहले दिन कोई ना कोई पाप किया है, कुछ ना कुछ तो किया है, इसीलिए तो नींद आ रही है इतनी भयंकर। तीसरा अमृत वेले अशरीरीपन का अनुभव ही नहीं, कितना भी चिल्लाते रहो अंदर से मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, आत्मा उड़ती नहीं है, शरीर 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 का ही अनुभव होता है। अगला उठ भी गए, आत्मा का अनुभव भी कर लिया, परंतु क्षणिक, व्यर्थ संकल्प, इधर उधर की बातें याद आएगी। अमृत वेला जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होगी, जो अतिंद्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए वो नहीं होगा, ये दंड है। वहां जो दंड का विधान है अलग है, फिजिकल पनिशमेंट नहीं है यहां पर, ये सूक्ष्म पनिशमेंट है। अमृत वेला मिस हो गया, जरूर रात को सोते समय कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, जैसे सोने के लिए श्रीमत दी गई है वैसे नहीं सोए थे, मोबाइल देखते देखते, मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टीवी, सीरियल, सॉन्ग्स, जोक्स, मैसेजेस, फोन पर बातें, ये सब करते करते, या परचिंतन की बातें, दो लोग कमरे में हैं, क्या क्या हुआ उसका डिस्क्रिप्शन करते करते सोए थे। एक विधि है हमेशा ये सोचना कि शिव बाबा मुझे देख रहा है, भगवान मुझे देख रहा है, उसकी आंखें स्कैन कर रही है मुझे, निरंतर रडार घूम रहा है, निरंतर मुझे देख रही है। बाइबल में लिखा, ही दैट प्लांटेड द ईयर शैल ही नॉट हियर, ही दैट प्लांटेड द आई शैल ही नॉट सी, जिसने आंख दी क्या वो नहीं देखेगा, जिसने कान दिया क्या वो नहीं सुनेगा। सीसीटीवी, गॉड सीसीटीवी कैमरा, निरंतर कुछ भी करो छूट नहीं सकते, मुझे कोई देख नहीं रहा है। अज्ञानी, एक और दूसरी बात, कोई किसान, कोई रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति ट्रैफिक रूल ब्रेक कर दे उसे कुछ नहीं, पर कोई सेलिब्रिटी है, कोई फिल्म एक्टर है, वो ट्रैफिक रूल ब्रेक कर दे तो क्या होता है? कोई सेलिब्रिटी, कोई फिल्म स्टार, कोई पॉलिटिशियन ट्रैफिक रूल ब्रेक कर दिया, हम कौन है? सेलिब्रिटीज, इस दुनिया की सेलिब्रिटीज कौन है? हीरो एक्टर्स हम है, साधारण सा पदाति सैनिक, किसान, व्यापारी कोई नियम तोड़ दे उसकी कोई चर्चा नहीं होगी, पर हम कौन है? सेलिब्रिटीज है, हमसे यदि कोई नियम टूटा तो एकदम सुर्खियों में, ब्रेकिंग न्यूज। अमृत वेला दंड मिलेगा, अमृत वेला ही दंड मिल गया, जो कल किया उसका। सो सकते थे 8:30 बजे 9 बजे 10 बजे तक, पर फिर भी व्यर्थ की बातों में, झरमोई झगमोई में, इधर उधर फोन करने में, बातें करने में, न्यूज, सोशल मीडिया, सॉन्ग्स, टेलीविजन, सीरियल्स, मूवीज, फिल्म्स, ट्रेलर्स, टाइम गवाया उसने। पहला दंड अमृत वेला, दूसरा दंड मुरली सुनने की इच्छा ही नहीं है, मुरली में रस ही नहीं है, नेमिनाथ की तरह चले गए, जा इसलिए रहे कि लोग ये ना सोचे कि इसको माया ने खा लिया, हमारी प्रेजेंट ही लग जाए बस, सब लोग देख ले मैं आ गया था, स्टैंप मैं आया था, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बोल सकता, दिन में सुरक्षा। पर मुरली में ना तो रस आ रहा है, और मुरली में जो मुरली सुना रहा है उसके योगुणों का चिंतन, या फिर मुरली सुनते समय नींद, और नींद भी इतनी भयंकर कि एक भाई ने दिखाया था क्या लिखा, पूरा गोल 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 नींद में ही, क्या लिख रहे वही नहीं पता, नींद में भी लिख रहा है वो भी ठीक है, पर मुरली में नींद, मुरली में बुद्धि भटकना, मुरली चल रही है और कुछ और विचार चल रहे, और ध्यान नहीं, एकाग्रता नहीं, रस नहीं, इंटरेस्ट नहीं, खुशी नहीं, आनंद नहीं, कुछ भी नहीं, बस नेमिनाथ एक रूल फॉलो किया जा रहा है, बस नियमावली, नियमावली है, हमने ये किया बस, और कुछ भी नहीं, बाकी उससे और हमारा कोई संबंध नहीं है। इंटरेस्ट किस में है, मुरली होने के बाद सूचनाओं में, इंफॉर्मेशन में, या फिर जो ये होगा वो होगा उसमें इंटरेस्ट जाता है, कोई मुरली क्लास से निकलने के बाद मुरली में क्या है उसकी चर्चा कम होती है, उसके बाद जो सुनाया गया उसकी चर्चा ज्यादा होती है, आज ये होने वाला है, आज वो होने वाला है, सूचना है, कहाँ की दिवाली है और गाड़ी कितने बजे है और वहां बन क्या रहा है, ये है दंड, मुरली में रस कम हो जाना, ये है दंड। तीसरा भोजन, भोजन करते समय याद नहीं, भोजन करते समय स्थिति बातें करते करते बातें खा रहे, जब हम बातें करते करते खाते तो ज्यादा खाते, क्योंकि ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अभी तृप्ति नहीं हुई है, एकांत में भोजन नहीं, मौन में भोजन नहीं, भोग लगाकर भोजन नहीं, जो भी खा रहे, क्या खा रहे हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे, पर जो भी खा रहे उसके प्रति भावनाएं कम है, वो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए खा रहे, ये भाव ही नहीं है कि ये क्या है, और ज्यादा खाया जा रहा है इसलिए, इस वजह से, और टेस्ट के अधीन होकर खाया जा रहा है, भोग नहीं लगा रहे, हम सोच रहे कि सबने भोग लगा दिया, वो तो जनरल लगा, तुमने कहां लगाया, किस मनस्थिति में खा रहे उसमें दोष दिखाई दे रहे। प्रार्थना, भोजन करना एक प्रार्थना है, एक तपस्या है, यज्ञ है भोजन, भोजन में रस कम हो जाना, या तो बहुत खाना या खाना ही नहीं, दोनों भी चीजें इंटरेस्ट ही नहीं, क्योंकि हमारे पसंद का बना ही नहीं, किचन में गए देखा डाइनिंग में क्या बना, टिंडी की सब्जी, एकदम भूख खत्म, कद्दू भूख खत्म, करेला भूख खत्म, आज कोई कहे क्या हुआ, आज भूख नहीं है, और बाहर निकला चला वहां कुछ और है, पनीर, एकदम भूख जाग गई, तो भूख का आधार क्या हुआ, टेस्ट, इसमें भी रस नहीं, और सारे दिन भर केवल भोजन का ही चिंतन चल रहा है, सुबह से लेकर रात तक क्या खाऊं और क्या खाऊं, ये खाया वहां क्या बन रहा है, यहां क्या बन रहा है, सारी जीवन भोजन के इर्द गिर्द घूम रहा है, ब्राह्मण जीवन। उसके बाद में ट्रैफिक कंट्रोल, कब बज रहा है क्या बज रहा है कुछ पता नहीं, कोई लेने देना नहीं है ट्रैफिक कंट्रोल से, वो बजता है एक रूटीन सा बज गया है, वही गीत कब बजता है, जब बजता है तो सोचते कब खत्म होगा ताकि बोले, ये बाधा हो गई बोलने में एक, अच्छा बोलना चालू था बीच में बज गया, जल्दी बाधा टले, ये है दंड। अगला कर्मयोगी, कर्मों में पाप होंगे अपने आप, चाहते नहीं है कि हमारी जो दिनचर्या है वो टूटे, पर अपने आप ही बोल ऐसे निकलेंगे कि दूसरा हर्ट होगा। अपने आप ही दिनचर्या ही ऐसी होगी कि जिसमें पाप ही पाप हो रहे। चाहेंगे कि हम नहीं करें पाप, परंतु फिर भी पाप हो रहे, क्योंकि दिन की शुरुआत ही कैसी की है। मुरलियों में कहा है गाड़ी को अमृत वेला पटरी पर डाल दो, अपने आप चलती रहेगी। अमृत वेला ही मिस, अमृत वेला ही ठीक ठाक नहीं, फाउंडेशन ही ठीक नहीं है दिन का। अमृत वेला ब्रह्मा का कर्तव्य है, दिन भर विष्णु का, रात में शंकर का, साकार अव्यक्त वाणी। सुबह ब्रह्मा बने ही नहीं, ब्रह्मा बनकर रचना नहीं की, तो दिन भर पालना किसकी करोगे? और फिर विनाश किसका करोगे? व्यर्थ का या अच्छे कर्मों का? तो कर्म में क्या होगा? योग नहीं होगा। क्या होगा? पाप होते रहेंगे छोटे 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 छोटे, दूसरों को दोषी ठहराते रहेंगे। जैसे एक व्यक्ति था, वो एक दुकान में काम करता था, सेल्समैन, पर हर कस्टमर के साथ झगड़ा करता था। उसके मालिक परेशान हो गया, उसके मालिक ने समझाया तुम हर कस्टमर के साथ झगड़ते हो। अरे याद रखो, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, ये तुम कैसे भूल जाते हो? पर वो भूल ही करते रहता था, हमेशा झगड़ते रहता था। फिर कहता मैं काम छोड़ के जा रहा हूँ, काम छोड़ के चला जाता है। कुछ समय के बाद मैनेजर को वो कस्टमर, वो अपना सेल्समैन दिखता है पुलिस के ड्रेस में, पुलिस मैन, ट्रैफिक पुलिस। कहता ये कैसे? तो कहते मैंने सारे प्रोफेशन ट्राई किया, ये एक ही है प्रोफेशन जिसमें कस्टमर इज इसलिए मैंने इसको ढूंढा। दोष निकालना दूसरों के, हर चीज जो मिल रही है उसमें फ्लॉ, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा भी नहीं चाहिए। कमरा मिला, कमरा ठीक नहीं है। साथी मिले, साथी ठीक नहीं है। सेवा मिली, सेवा ठीक नहीं है। स्थान, ये स्थान चेंज करना है। एक आत्मा थी, वो पहले कहीं और थी, फिर इधर आई, वहां कहीं पर भी सेट नहीं हुई, नीचे शांतिवन में आई, शांतिवन में सेट नहीं हुई, ऊपर फिर ज्ञान सरोवर, फिर वहां भी ठीक नहीं हुआ, फिर एक दो जगह और, फिर हॉस्पिटल में आई, फिर हॉस्पिटल में कुछ दिन, फिर वहां पर भी ठीक नहीं लगा, अभी घर पर है। वहां क्या है पता नहीं, क्योंकि हर चीज में दोष है। कहीं पर सेवा ठीक नहीं है, कहीं पर टाइमिंग ठीक नहीं है, कहीं पर लोग ठीक नहीं है, कहीं पर बॉस ठीक नहीं है, कहीं पर जूनियर ठीक नहीं है, कहीं पर जो सेवा का नेचर है वो ठीक नहीं है, उसमें हमारा योग नहीं होता है। हर चीज में सिस्टम ही गलत है, यहां पर हर चीज में दोष। डिपार्टमेंट ठीक नहीं है, डिपार्टमेंट के लोग ठीक नहीं है, आंगन में ही दोष निकाल रहे हैं। कर्म में अपने आप पाप होते रहेंगे। अगर ये है दंड, दंड कौन सा? ये दंड, स्थिति का गिर जाना ही दंड है, यही धर्मराज की सजा है। नेक्स्ट, नुमा शाम का योग। कितने दिन हो गए नुमा शाम का योग क्या होता है पता ही नहीं, भूल गए नुमा शाम का योग। जो अनुभव अमृत वेला तो हुआ, पर नुमा शाम नहीं हो रहा है। 6:30, 7:30, बड़ी मुश्किल से 7 to 7:30, आधा घंटा, ये भी एक दंड ही है। नेक्स्ट, ज्ञान की चिटचाट या ज्ञान की चर्चा तो भूल ही गए करना। अभी चर्चा कौन सी करते, चार पांच लोग मिलकर घूमने जाते, और कौन सी चर्चा करते? मौसम की, पॉलिटिक्स की, स्पोर्ट्स की, कहां क्या हो रहा है, कौन से भाई के साथ क्या हुआ, कौन सी बहन के साथ क्या हुआ, फिल्मी दुनिया, वो सब की चर्चा होती है। ज्ञान की चर्चा कहाँ है? ज्ञान की चर्चा खत्म, संसारी चर्चा चल रही है। और ऐसा यदि हो तो ये भी समझ लेना दंड ही है। नेक्स्ट, चार्ट। चार्ट लिखना बंद है। क्या लिखेंगे? ऐसी दिनचर्या है जिसमें पाप ही पाप है, उसके कहाँ कौन क्या लिखेगा। चार्ट तो हम तब लिखते हैं जब इतनी खुशी है कि सारे दिन भर हमने सुबह से लेकर हर श्रीमत का एक लिस्ट बनानी है। अमृत वेला किया, सब कुछ किया, और सब कुछ इतना परफेक्ट किया है। अमृत वेला भी किया, मुरली भी सुनी, चिंतन भी किया, मनन भी किया, अध्ययन भी किया, दूसरों को ज्ञान भी सुनाया, खुद भी सुना, क्लास भी सुनी, एकांत में भी गए, एक्सरसाइज भी की, सब किया, भोजन पर संपूर्ण संयम था, कहीं पर कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है, पूर्ण भोग लगाकर नीचे बैठकर मौन में किया, कोई व्यर्थ की बातें नहीं की और एक मिनट भी वेस्ट नहीं किया सारे दिन भर, बस अपना काम कर्म योग होते ही सीधा अंदर घुस जाओ, इधर बहुत काम करना बाकी है। बाह्य मुक्ता ही बहुत बड़ा एक पाप है देखा जाए तो, सुबह से लेकर रात तक बाह्य मुखी, अंदर कब जाएंगे, अंदर कितने काम करने बाकी है। तो चार्ट वही लिख सकता है जो दिन भर एक्यूरेट चल रहा है, नहीं तो चार्ट लिखने की इच्छा ही नहीं होती है। दो चीजें, एक चार्ट लिखना, एक डायरी लिखना। चार्ट न भी लिखो पर डायरी तो जरूर लिखो, एक डायरी हो जिसमें हम अपनी दिनचर्या लिखे पूरी, सुबह से लेकर रात तक क्या हुआ, और उसमें फिर याद का चार्ट भी डालो। तो ये हो गए 8 प्रकार के दंड। अब एक दूसरी श्रेणी भी है, ज्ञान योग धारणा सेवा। ज्ञान योग धारणा और सेवा, इसको इस कैटेगरी से भी इसी को लिया जा सकता है। ज्ञान में रुचि कम, योग लगेगा ही नहीं, लोग लगता ही नहीं है, बाबा थोड़ा देर बस बाबा से थोड़ी बहुत बातें होकर चलेगी, पर अशरीरीपन, कंबाइंड स्थिति, अव्यक्त स्थिति, वो सब नहीं होगा। धारणाएं टूटेगी दिन भर। थॉट लेवल पर भी प्यूरिटी तोड़ना अर्थात लॉ को ब्रेक करना है। विचार के तल पर भी ब्रह्मचर्य को तोड़ना अर्थात लॉ को ब्रेक करना है, और लॉ को यदि तोड़ा, प्यूरिटी लॉ है इस यज्ञ में, तो उसका दंड है। सेवा कर रहे परंतु कैसे कर रहे, मर मर के कर रहे, ड्यूटी कर रहे, बस मेरी ड्यूटी होगी 9 से 5, मैं तो चला, यज्ञ है मेरा, घर है, ऐसा सेवा नहीं कर रहे, बस टाइम टू टाइम मेरा काम हो गया मैं तो चला। जीसस क्राइस्ट का स्टेटमेंट है, जीसस क्राइस्ट देखता है, एक चर्च में आता है, एक सिनेगॉग में आता है, चर्च नहीं सिनेगॉग, यहूदियों का सिनेगॉग होता था, टेम्पल को सिनेगॉग, वहां देखता है लोग क्या कर रहे हैं, कोई कुछ बेच रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, कोई पंछियों को बेच रहा है, वो आता है एक चाबुक लेता है और सबको मारने लगता है और उखाड़ उखाड़ के एक एक चीज को टेबल फेंकता है, वो फेंकता है, उसको रोका जाता है, क्या कर रहे हो तुम, वो कहता है मेरे प्रभु के घर को इन लोगों ने क्या कर दिया है। द लव फॉर दिस हाउस ऑफ गॉड बर्न्स इन मी लाइक फायर, परमात्मा के इस घर के लिए मेरे अंदर जो प्यार है वो आग की तरह है। The love for this house of God burns in me like a fire. इस यज्ञ के लिए मेरे अंदर जो प्यार है वो कैसा है, आग की तरह है। You have made the house of my God into den of thieves. चिल्लाता है वो सब पर, उसका एकदम क्रोध वाला रूप है। पूरे न्यू टेस्टामेंट, पूरे बाइबल में ये एक ही समय है जीसस क्राइस्ट जहां क्रोधित हो गया है, जब वो देखता है ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, और वो करने वाले भी सब फैरिसीज, प्रीस्ट, पंडित, पुरोहित, ये सब लोग भगवान का नाम ले लेके लोगों को ठग रहे, आम पब्लिक को नहीं, ये लोग थे वो सारे। तो सेवा कर रहे पर कैसी, काम चलाओ, मर मर के, दुखी हो के, बस करना है, इसलिए ड्यूटी दी है हमको, बस नाम मान शान के लिए भर्ती यज्ञ में इसलिए हुए है, कुछ कुछ तो यहां भर्ती किस लिए हुए है, नाम के लिए, आगे पीछे घूमने के लिए, फोटो के लिए। ज्ञानामृत दिखते ही सबसे पहला चीज क्या ढूंढते हैं, मैं हमने फोटो दिया था वो कहां है, इधर 10 फोटो है, और 10 फोटो से कोई लेना देना है, वो जो छोटा वाला जो है ना उसमें मैं दिख रहा हूं, राखी बांधते हुए या गिफ्ट लेते हुए देते हुए, वो मैं हूं। ये कितना स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव देखो कैसा है। अगर ये फोटो है, ग्रुप फोटोग्राफ यहां लिया जाए और दूसरे दिन दिखाया जाए, सबसे पहले हम किसको ढूंढते किसको ढूंढते सबसे पहले, अगर मेरा फोटो ऐसे आंखें बंद करके आ गया तो फिर क्या कैसा लगता है, फिर बाद में इच्छा नहीं होती उसको देखने की हम कितने आत्म केंद्रित है, मैं केंद्रित है बस। अगर कोई कह दे तुम्हारा फोटो ज्ञानामृत में छपा है, आज तक तो कभी देखी नहीं, पढ़ी नहीं, सीधा भागेंगे लाइब्रेरी में, वो अलग है ना, अमृत चाहिए। और वो ढूंढने की उसमें किसको, मैं को, मेरा फोटो कहां छपा है, बाकी इतनों के छपे, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना किससे है, बस अपने आप से, मैं से। तो ज्ञान योग धारणा सेवा, ये एक प्रकार का दंड है, इसमें गिर जाएंगे। तीसरा वर्गीकरण है अग्नि। अग्नि जो जली हुई है कौन कौन सी, वो सब बुझ जाएगी। ज्ञान की अग्नि बुझ गई, वैराग की अग्नि बुझ गई, योग की अग्नि बुझ गई, लगन की अग्नि, अभी संडे की मुरली का वरदान था, अव्यक्त मुरली का वरदान, वरदान क्या था, आग। आग कौन सी है, लगन की आग। दिए की ज्योति कौन सी हो, कुल के दीपक हो, चैतन्य दीपक हो, बाप की आशाओं के दीपक हो, कौन सी आग है अंदर, लगन की अग्नि, वही बुझ गई। तप की अग्नि, त्याग की अग्नि, वैराग की अग्नि, प्रेम की अग्नि, कोई पवित्रता की अग्नि, कोई अग्नि नहीं रही वहां पर, बुझे हुए दीपक दीपावली के। ना खुद जल रहे हैं, ना दूसरों को, ना खुद प्रकाशित है, ना दूसरों को प्रकाशित कर रहे, अंदर सब कुछ ठंडा हो गया है, बुझे से है बस। कोई जोश ही नहीं रहा है किसी बात का, ना ज्ञान का, ना योग का, ना धारणा का, ना सेवा का, कुछ नहीं, मर चुके हैं जैसी चेतना। स्वयं को स्वयं ही जगाना है, नहीं तो जैसे एक बॉल है, उसको सीढ़ियों से नीचे फेंको, कहां जाता है, नीचे 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 नीचे। एक दिन गलती करो, अगले दिन वही गलती करने की फिर इच्छा होती है, नीचे 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 नीचे, और नीचे ही जाएगा, उसका स्वभाव बन गया है नीचे जाने का। स्थिति एक बार गिर गई तो ये नहीं समझ लेना कि अमृत वेले ठीक हो जाएगी, वो नीचे ही गिरती जाएगी, गिरती 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 गिरती, और नीचे और नीचे और नीचे, जब तक तुम कठोर पुरुषार्थ से उसको रोकोगे नहीं, परिश्रम से, पूरी दिनचर्या पे के प्रति हमारा जो चिपकाव है कि मेरी ये दिनचर्या है, कंफर्ट जोन में मुझे रहना है, बस यही है, निकलो वहां से बाहर, जहां संगठन है वहां उसके बीच में जाओ, जहां तीव्र पुरुषार्थी लोग हैं उनके, उनका संग करो, जहां ज्ञान की चर्चा हो रही है उनके बीच में जबरदस्ती जाकर बैठो, क्योंकि पता है यही मार्ग है, इसके अलावा कोई मार्ग है ही नहीं, नहीं तो बाकी केवल व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब जगह व्यर्थ के ही अंबार लगे हुए हैं। चर्चा किसकी चल रही है, मौसम की, भालू की, भोजन की, पॉलिटिक्स की, कल की प्लानिंग की, कल कहां जाना है, घूमने फिरने मौज करने, यही करते रहोगे तो आत्मा नीचे नीचे ही गिरती जाएगी। तो ये भी एक है, ये जितनी अग्नि है ये सब क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। और इस पूरे यज्ञ में यदि कोई खुश है और सुखी है तो एक ही व्यक्ति है, जो बाहर से दिखा रहे हैं हम बहुत खुश है, बहुत सुखी है, बहुत स्थिर है, स्टेबल है, हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, हमारी जड़ें बहुत गहरी हो गई है, अब बहुत सुरक्षित है, हमें कोई कुछ नहीं बोलता, ना कुछ कर सकता है, वो सुखी नहीं है। सुखी एक ही है जो तीव्र पुरुषार्थ में अग्रसर है, जो भीतर ही भीतर तपस्या कर रहा है, जो भीतर ही भीतर अपने ऊपर काम कर रहा है, उसको पता है कि अभी मुझे बहुत काम करना बाकी है। बस वही व्यक्ति, ऊपर से कोई कितना भी दिखाए कि मैं बहुत खुश हूं, नहीं है। यज्ञ में सबसे आगे वो है जिसकी स्थिति आगे है, और यज्ञ में सबसे आगे वो है जिसकी प्यूरिटी आगे है। अच्छा, दूसरी एक बात, ये जो ढीली ढाला पुरुषार्थ है उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है पता है, इम्प्यूरिटी का। क्योंकि यदि आत्मा अभिमानी हम नहीं रहते और शरीर अभिमानी रहते और भोजन भोजन की ही चर्चा चल रही है, तो शरीर में जब इतना सारा डेंस मटेरियल जा रहा है तो इंद्रिया उत्तेजित होगी और आकर्षण काम की तरफ, शरीर की तरफ होगा, पर डायरेक्ट विकार में नहीं उतरेंगे। परंतु प्यूरिटी अलग अलग, जब प्यूरिटी को दमन किया जाता है इम्प्यूरिटी का, वो अलग अलग रास्ते ढूंढती है, फिर दोस्ती के, फ्रेंडशिप, गिफ्ट्स, ये सब हंसी मजाक, खेलना कूदना, ये सब कुछ, या फिर फोन पे बातें करते रहना, इधर उधर की बातें सेवा संबंधित, डेटा, वीडियो कॉल्स, कॉल्स, वीडियो फिल्म्स और एक दूसरी बात, जब हमें अगर कोई समझाने की कोशिश करे, संडे की मुरली, कोई समझाए या बताए तुम गलत हो, वो खुद मान भी ले पर नेचर नेचुरल हो चुकी है तब तक, या फिर पहले तो मानेगा ही नहीं। जैसे एक थीफ था, एक चोर था, उसको तीसरी बार पकड़ा गया, जज ने पूछा तुम क्यों करते हो, व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन, तुम्हारा इस संसार के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, हमेशा चोरी करते रहते हो। वो कहता है बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेरी वजह से तो तुम सब जी रहे हो, जज, वकील, वो CID, डिटेक्टिव्स, पुलिस, अगर मैं नहीं हो तो तुम सब, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे लिए मैं जी रहा हूं। तो व्यक्ति अलग 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 कारण ढूंढता है, एक्सक्यूजेस ढूंढता है, पर मैं राइट हूं। तो ये सब क्या था, दंड विधान ब्राह्मणों का के लिए, दंड विधान। पुराने जमाने में यदि कोई किसान कोई अपराध करता था उसे 1 काशार्पण, अगर राजा अपराध करता था 1000 काशार्पण देने पड़ते थे दंड। तो हम सब राजा है, हम सब बड़े लोग हैं, VIPs है, सेलिब्रिटीज है। ये तो हो गई स्थूल सजा, अभी और सूक्ष्म सजाएं कौन कौन सी है, ये तो हो गई बहुत स्थूल। मेंटल पनिशमेंट्स है कुछ, ये फ्योडर डोस्टोवस्की का एक स्टेटमेंट है, वो कहता है इट इज द मेंटल एंग्यूश ऑफ द मेमोरी ऑफ द क्राइम एंड फियर ऑफ पनिशमेंट। आज अपराध हुआ, 20 साल के बाद सजा हो रही है, तो ये 20 साल क्या था, ये ही सजा थी, अब क्या सजा दे उसको 20 साल के बाद। इट इज द मेंटल एंग्यूश ऑफ द मेमोरी ऑफ द क्राइम एंड फियर ऑफ पनिशमेंट। तो मानसिक सजाएं कौन कौन सी है, सबसे पहली मानसिक सजा है गिल्ट कॉन्शियसनेस। गिल्ट कॉन्शियसनेस अपराधी भाव, सेल्फ हेट्रेड, खुद के प्रति हेट्रेड, हीन भावना, एकदम न्यूनगंडता, ये है पहली सजा। दूसरी सजा है एंग्जाइटी, हमेशा बेचैनी रहती है, हमेशा घबराहट रहती है। आपने किसी को मार दिया और उसकी सारी जायदाद ले ली, पुलिस से छूट गए, रोज रात को वो व्यक्ति आएगा स्वप्न में दिखेगा, बदरू, कोई बदरू आएगी और सताएगी तुमको, एंग्जाइटी। तीसरा भय, इनसिक्योरिटी रहेगी, निरंतर इनसिक्योरिटी, यही सजा है। वो पुलिस से तो छूट गया है, कोर्ट से छूट गया है, पर ये सूक्ष्म सजा है, उसके अंदर ही अंदर चल रहा है हमेशा। अगला डिप्रेशन, डिप्रेशन में चला जाएगा व्यक्ति सोच सोच के कि मेरे से अपराध हुआ है, दुनिया की नजर से तो मैं छूट गया पर अपराधी भाव है अंदर ही अंदर, अपराध, डिप्रेशन में चले जाएगा व्यक्ति। अगला अनकंट्रोल्ड निगेटिव थॉट्स, निगेटिव विचार ऐसे आएंगे कि रोक ही नहीं पाएगा वो अपने आप। नेक्स्ट अनकंट्रोल्ड विशियस थॉट्स, विकार के विचार अपने आप आएंगे। अगला टेंशन, एक निरंतर स्ट्रेस रहेगा, एक तो भय इनसिक्योरिटी बताया, एक टेंशन निरंतर रहेगा कि किसी को पता ना चल जाए, एक बोझिल मन, क्या पुरुषार्थ करेगा, पुरुषार्थ के लिए मुक्त हृदय चाहिए, पुरुषार्थ के लिए जीवन खुली किताब चाहिए, पुरुषार्थ के लिए सच्चाई चाहिए, झूठ के साथ पुरुषार्थ नहीं किया जा सकता। अगर ये सब हो रहा है तो सबसे पहला काम, फिर कह रहे माफी मांगो, बाबा से माफी मांगो, लिख कर दो, या कोई निमित्त है जिसे आप मानते हो उसके सामने अपने गुनाहों की तलाफी, माजरत, रिपेंटेंस, कॉन्ट्रिशन, कॉन्ट्राइट स्पिरिट। एक पूरी किताब लिखी गई है सेंट अगस्टीन। कल ही ओपीडी में एक विदेशी बहन आई थी ट्रिनिडाड, उसका एड्रेस लिखा था सेंट अगस्टीन, तो एकदम हमें याद आ गया, सेंट अगस्टीन की पूरी किताब है कन्फेशन ऑफ सेंट अगस्टीन। एक संत हुआ है विदेश में, सबसे बड़ा संत, सेंट असीसी के लेवल का, विदेश का क्रिश्चियन में, सेंट अगस्टीन, उसने एक किताब लिखी है और उस किताब में अपने सारे पापों को गिनाया है, और फिर कैसे एक दिन अचानक उसको रियलाइजेशन होता है ये मैं क्या कर रहा हूं। वो लिखता है ऐसा कोई पाप नहीं होगा जो मैंने नहीं किया, पर पापों में वो सबसे आगे था। फिर जो यात्रा उसने चालू की, जैसे तुलसीदास की कहानी है, ऐसे बड़ा आगे, इतनी तपस्या, इतनी तपस्या, इतनी तपस्या कि पूरे क्रिश्चियनिटी में सबसे बड़ा संत माना जाता है अगस्तीन को। पाप की गर्त से निकला और फिर ऊपर ऊपर उठते गया। इतनी तपस्या, इतनी तपस्या जीवन में, पूरा जीवन तपस्वी है, सारा जीवन जीसस क्राइस्ट का संदेश देने में लगा दिया उसने। एकदम टर्न, तो कन्फेशंस, कन्फेशन अर्थात ये करना, मान लेना अपने गुनाह, कबूल कर लेना, कन्फेस कर लेना। एक व्यक्ति चर्च में रोज जाता है, कहता है, हे प्रभु मेरे चारों ओर मकड़ी का जाल है, चारों ओर प्रलोभनी प्रलोभन है, प्रलोभनी प्रलोभन, रोज यही कहता है। एक दिन वो फादर पीछे से आता है, वो कहता है आई एम सराउंडेड बाय कॉबवेब्स, कॉबवेब अर्थात मकड़ी के जाल, जहां देखो तब मैं फंसता हूं, हे प्रभु मुझे छुड़ाओ। वो फादर कहता है, कंधों पे हाथ रखते, किल द स्पाइडर, मकड़ी को क्यों नहीं मार देते तुम, भगवान को क्यों कहते हो कि मुझे उस जाल से छुड़ाओ, मकड़ी मतलब जो सोर्स है उसका, उसको खत्म करो, किल द स्पाइडर। हमारे बीच में जज साहिबा है तो दो मिनट, हाँ चलेंगे तो दो मिनट अपना थोड़ा अनुभव सुनाएंगे। पूनम मैडम आइए। वर्तमान समय कहाँ पर है, लखनऊ में है या रायबरेली के पास? तो ये जज साहिबा है, ज्ञान में चलते हैं बाबा के, और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है इनके। हमें सबसे पहले जब प्रेम भाई ने मिलाया तो पता चला अभी अभी किसी को लाइफ सेंटेंस दिया है, डेथ सेंटेंस, हम तो डर गए हमने कहा बाप रे जज है, सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट में जज है और बहुत बड़े बड़े फैसले इन्होंने सुनाए हैं। उम्र काफ़ी कम है इनकी और फिर भी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी और ज्ञान में भी बहुत लगन है, बहुत तीव्रता है और तीव्र पुरुषार्थ के मार्ग पर अग्रेसर है। तो यहाँ कुछ दिनों के लिए आए थे, अपना अनुभव हमारे सामने शेयर करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। यहाँ एक बहुत, एक तो नहीं बहुत सारी स्वीट सोल्स बैठी हैं, बहुत महान सोल हैं, पता नहीं महान हैं कि क्या, लेकिन कुछ यूनिक हैं, कुछ दादियों से मिलती जुलती मुझे दिखती हैं, कुछ में नॉट एग्जैक्टली बाप समान बाप, बट टू ग्रेट एक्सटेंट वहाँ तक पहुँची हुई हैं। उसमें प्रेम भाई हैं जो मुझे दिखते हैं, जो मैंने उन्हें तीन बार में महसूस किया है, सेवाधारी हैं सिंपल, यहाँ जैसा लोग बताते हैं। मुझे लगता है हम सब सेवाधारी हैं, इवन हमारे यहाँ जो मेड हेल्पर हमारी काम करती है वो भी सेवाधारी, हम सब यहाँ सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं। कोई घर में दे रहा है, कोई हस्बैंड को दे रहा है, कोई बच्चे को दे रहा है, कोई पब्लिक एट लार्ज को दे रहा है, आप कोई पेशेंट्स को दे, बस एवरी वन इज डूइंग जस्ट सेवा। अब समस्या ये कि सेवा करने के लिए आपको फुली कॉम्पिटेंट होना चाहिए, तो ही तो आप बढ़िया सेवा दे पाएंगे, और फुली कॉम्पिटेंट होने के लिए आपको खुद को जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन है। भाई जी हमको कई दिन से कह रहे हैं कि अपना परिचय दे दो, तो क्या परिचय दूँ, मेरा तो परिचय आप ही लोगों ने दिया है कि मैं आत्मा हूँ, और मुझे नहीं पता था, मैं पिछले 20 साल से अकेले रह रही हूँ और स्ट्रगल कर रही हूँ, ये मेरी चौथी नौकरी है, ये दो टॉपिक आपके यहाँ है, ब्राह्मणों के गुनाह और धर्मराज का इंसाफ, यहाँ बैठी हूँ मैं, बाबा ने ड्यूटी सौंपी है कि ये करना है, अब ये करना इस वेरी डिफिकल्ट टास्क। इवन भाई जी को भी यहीं बैठाया इसी साइड में, ये ज्ञान दे रहे हैं कि यहाँ बैठ के सबको बता दो, बाकी फाइनल डिसीजन वो लेगा, और मुझे वहीं बैठा दिया है कि ये, क्योंकि उनको तो किसी के शरीर को लेके काम लेना है ना, तो मुझे वहां बैठा रखा है। अब मेरा काम बहुत ही टफ इसलिए होता है क्योंकि मुझे कोई पसंद नहीं करता किसी से हेल्प नहीं मिलती, और मैं, मेरी पहचान आप कहें कि कुछ यूनिक सोल हूँ, मुझे जो लोग अपनी ड्यूटी प्रॉपर नहीं करते वो पसंद नहीं आते हैं, चाहे वो मदर है तो मदर इज सपोज टू वर्क प्रॉपरली एज अ मदर, एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई का काम बनता है प्रॉपरली अपना काम करे, नहीं तो नहीं करे। आप यहाँ बैठे, आपके ऊपर बहुत बड़ी ड्यूटी है। मैं प्रेम भाई से तीन दिन से कह रही हूँ कि डॉक्टर सचिन की क्लास यहाँ क्यों चलती है और सिर्फ 25 लोग क्यों हैं। आपके यहाँ पता है आपके इंस्टीट्यूशन में दो तरह की क्लास चल रही है, और आई एम सो फॉर्चुनेट कि मुझे दोनों अटेंड करने को मिला दो विजिट में, पहली बार कोरोना में के पहले आई थी, 28 फरवरी फर्स्ट डे में आई, ब्रह्मा कुमारी मतलब सिस्टर शिवानी, मुझे इतना ही पता था। मेरे डिस्ट्रिक्ट जज ने एक बार कहा था सुन लेना, तो झगड़ा उगड़ा मेरा हुआ कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम को लेकर के ही, तो मैंने, उन्होंने कहा तुम बहुत अच्छी ऑफिसर तो बहुत हो, बहुत इम्पार्शियल हो, काम करती हो, लेकिन खुद के लिए बहुत नुकसानदायक है, तो तुम एक आध बार सिस्टर शिवानी को सुनो। तो व्हेन आई हर्ड सिस्टर शिवानी आई केम टू नो दैट कि यू विल हैव टू वर्क ऑन सेल्फ, खुद पे काम करना है, दूसरों के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। तो अच्छा लगा सुन के, थोड़ा पीस भी मिला, फिर मुझे लगा इससे मिलते हैं, ये है ऐसे ही भाषण ही दे रही है, कुछ है भी। तो मैं सीधे बस प्लान किया, उसका दूसरा वीडियो मैंने उनका नहीं सुना, घर फॉरवर्ड कर दिया, पढ़ो लोग बड़ी अच्छी चीज़ है ये। यहाँ मिलने आई, बहुत सारी क्वेरीज लेके आई थी कि पूछूंगी उनसे क्या है कैसे है। अब मेरे बगल के कमरे में हारमोनी हॉल में रुकी हुई थी वो, तो जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिलने गई तो कुछ ड्रामा ऐसा था कि मुझे डायस स्टेज तक बुला लिया गया, अकेले में उनसे मुलाकात करा। आई कुडंट स्पीक सिंगल वर्ड्स बिफोर हर, आई वॉज सो शॉक्ड कि मेरे जैसा लॉजिकल आदमी और इससे बात नहीं कर पा रहा है इनसे। रात में आई वॉज सो डिस्टर्ब, मैंने कहा अच्छा रात में इनके कमरे में चलती हूँ, फिर मुझे लगा नहीं नहीं ये कुछ सिंपल आदमी है, अपना अध्यात्म अध्यात्म करेंगी, छोड़ो डिस्टर्ब, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे डिस्टर्बेंस पसंद है ना, मैं दूसरों को डिस्टर्ब करती हूँ। आई थॉट कि ओके फॉरगेट दैट, अब छोड़ो सवेरे मिलते हैं। और सवेरे फिर उनसे मिली, मैंने कहा सिस्टर आई एम गोइंग, तो अभी भी मेरा स्टिल मेरे हाथ शी इज शिवरिंग, उन्होंने मेरा हाथ खींचा और लिफ्ट की तरफ लेके चली गई। पूरा क्राउड उनको पकड़ने को था, मेरे को तो ना क्राउड से मतलब ना इधर से मतलब, बस एक वही दिखी, मैंने कहा बाय करें और चलें यहाँ से। वो मेरा हाथ खींच के ले गई लिफ्ट में और बोली चलो नीचे तक चलते हैं। तो वो कुछ कुछ बोलती रही, आई कुडंट हियर टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ भी नहीं सुन सकी मैं। और फिर उसके बाद जो है लिफ्ट के नीचे आ गए, तो मुझे लगा अब तो खत्म, अब फिर जा रही है, फिर मैं नहीं बोल पा रही हूँ। मैंने कहा सिस्टर खूब तेज से, वो अपना चल रही थी पीछे, मैं कुछ तो बोल लूँ इनके आगे, कुछ तो बोल लूँ। तो मेरे मुंह से सिर्फ एक वर्ड निकला, मैं चूंकि यहाँ टॉप पे आई थी हिल पे, तो मेरे लिए नीचे बहुत क्योस है, यही मेरा एक वर्ड उनके सामने था, नीचे बहुत क्योस है। एंड सी सेड कि ये क्योस तो और बढ़ेगा, यू मस्ट विजिट टू सेंटर। आई डोंट नो सेंटर क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, सूरज भाई को एक लोग मिलवाने ले गए आप लोग, वो देखते ही मुझसे कुछ ऐसा बोले, काम का तो अलग था, तो बोले कि ज्ञान में आ गई है, इन लोगों से पूछा ज्ञान में आ गई है, ज्ञान है। तो हमें लगा ज्ञान है, पढ़ लिख के बंद हो गए, अब क्या ज्ञान। तो फिर मैंने उससे कुछ सोचा होगा इनका अपना ज्ञान, ये सोच रहे होंगे मैं बच्ची हूँ, ऐसा मुझे लगा कि मुझे बच्ची समझ रहे हैं। तो मैंने उनसे कुछ ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन एक वर्ड उन्होंने बोला कि डेथ सेंटेंस तो देना पड़ेगा, तो मुझे लगा कि इनको कुछ कानून भी नहीं पता है। एंड देन आई लेफ्ट द प्लेस, आई वेंट बैक टू माई होम वर्क प्लेस, वहाँ गई। फिर यही भाई जी लोग जो सिंपल सिंपल आत्माएं हैं, जिनको हम लोग सोचते हैं जैसे आपको लगता है सेवाधारी, सेवाधारी भाई में से एक भाई ने कहा कि आप एज अ चीफ गेस्ट हमारे यहाँ आइए, हम लोग कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाना अलाउड नहीं है तो अवॉइड करते हैं, लेकिन इनके यहाँ मुझे पहले तो मैंने मना कर दिया, मैंने लिटरली आई स्कोल्डेड हिम कि आप लोग मुझे बुलाया मत करिए, क्योंकि आपकी संस्था को मना करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है और मेरे कदम चल जाते हैं, और यहाँ आना मेरे काम में बाधक है, क्योंकि आई एम नॉट सपोज टू अटेंड एनी पब्लिक प्लेटफॉर्म, और मैं अपने काम के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। तो मैं गई इनके यहाँ, एंड जस्ट आई एंटर्ड, मैं वो भूल ही नहीं पाती हूँ, जैसे ही आई एंटर्ड इन द हॉल आई रियलाइज द सेम वाइब्रेशन व्हिच आई रियलाइज्ड इन माउंट आबू एट ध्यान सरोवर। तो मुझे लगा ये हॉल और कमरा वहाँ सिंपल ऐसे ही बड़ा सा है, इतना ही बड़ा है और 8-10 कुर्सियाँ लगी हुई हैं। अब मैं तो यहाँ सिल्वर जुबली से गई थी, तो मेरे मुंह से बस एक ही सेंटेंस निकला कि ये तो जगह माउंट आबू है भाई, ये आप लोग मुझे यहाँ के बुलाएं और इसको माउंट आबू बना दो, क्योंकि सबके पास इतना पैसा नहीं है कि वहाँ तक पहुँचा सके, कन्विंस से खर्च वर्च लगता है। मुझे नहीं पता था ऐसे भी लोग आ जाते हैं यहाँ पर जो सेवा भाव से हों, तो मुझे लगा कि इसको बना दो, लोग इसके बेनिफिट लें यहाँ पर आकर के। और फिर मैंने ही कई चीज़ें ऑर्डर कर डाली सिलसिला शुरू हो गया, आती जाती रही वहाँ। तो इस तरह से बाबा की टचिंग और बाबा का अनुभव तो मेरे साथ बहुत सारा हो रहा है। मैंने पिछले 20 सालों में, मेरे फादर चीफ मेडिकल ऑफिसर रहे, डॉक्टर फैमिली से हूँ, आई एम द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली हु केम इन द जुडिशियल फील्ड, जो उसने लॉ पढ़ा, कोई जज जानते ही नहीं जज क्या होता है, इवन मैं भी नहीं जानती थी, मैंने लॉ पढ़ाई करी थी जेठमलानी बनने के लिए। वी वर स्टेट लॉन्ग बैक, हमारे पास काफ़ी प्रॉपर्टी पट्टी है। तो आई लॉस्ट माई फादर एट द एज ऑफ 18 व्हेन आई वॉज 18। तो एक था कि प्रॉपर्टी बचानी है, आई एम एल्डेस्ट वन इन माई फैमिली और सिस्टर बाय ब्रदर्स नहीं था, मतलब मैं जेठमलानी बन जाती हूँ, प्रॉपर्टी पढ़ लूँ लॉ और बन जाऊँगी। तो वहाँ पे लोगों ने फिर मोटिवेट किया कि तुम जज बनो, नहीं क्या होता है। तो जब मैं पढ़ रही थी ना, एट दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज वेरी सीरियस, मुझे लॉयर तो बनना नहीं था, जेठमलानी बनना था। मैं खूब सारी सारी एक एक किताबें, सारे प्रॉब्लम सब पढ़ के एकदम रात रात भर पढ़ के पक्का 3 साल का LLB। फिर ये हुआ कि आप जो है कॉम्पिटिशन दीजिए जज के लिए। मैंने ये वो जज तो सुना ही नहीं था, जज नॉर्मली लोग नहीं सुनते हैं इतना। तो फिर उसके बाद जो है एग्जाम दिया, वो भी क्लियर हो गया, रैंकिंग भी आ गई, सब हो गया, नौकरी में आ गए। जब यहाँ पे इसके पहले मैं, मेरा 4th जॉब है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रही हूँ, साल भर किया। एट दैट टाइम आई लॉस्ट माई फादर, सो आई क्विट दैट जॉब, क्योंकि पैसे वाला हिसाब किताब था वहाँ पर, और इधर बड़ी थी सबसे तो फैमिली देखना था। देन आई ज्वाइन असिस्टेंट प्रोफेसर एज इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हिदायतुल्ला छत्तीसगढ़। आई सर्व्ड ओवर देयर फॉर 4 ईयर्स। मटेरियल वर्ल्ड है, बाल से लेके और चप्पल तक एक रंग का दिखना चाहिए, लाल पीला नीला हरा, सूट ही नहीं करता था पर्सनैलिटी पर। लगा यहाँ पढ़ाई कम और ड्रामेबाजी ज़्यादा है, चलो यहाँ से भी चलो। आई कम्प्लीटेड माई एजुकेशन फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी, तो संस्कार है वहाँ पर कुछ अलग तरह के। ये जॉब में थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन इसलिए मिला कि यहाँ एक तो बिल्कुल पब्लिक से आप दूर हैं, अलूफ हैं, लेकिन काम जो मिला वो बहुत टफ टास्क है। और जैसा कि आप लोग, ये जज साहिब है, जज है, जज व्हाट इज जज, व्हाट इज SP DM क्या है, ये सिंपल एक नाम है उस काम के लिए। यू आर ब्राह्मण, क्या है ब्राह्मण मतलब, क्या आप समझ रहे हैं, डिवाइन सर्विस डिस्चार्ज कर रहे हैं आप जो बोल रहे हैं वो आप में दिखना चाहिए, अदरवाइज आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं उसकी। फिर मत लीजिए ये ड्यूटी, हट जाइए, हट जाइए, क्योंकि आप बहुत बड़ा नुकसान करें। और यही आपको डॉक्टर सचिन भाई को गॉड ने चुना है, वो मुरली भी सुना सकते थे ना, क्या जरूरत थी उनको ये वाला उसमें से निकाल करके क्लास लेने की। वो बाबा ने बैठाया है कि मुरली सुना, सारा आत्मा की ज्ञान सुन लिए कि आत्मा, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ आत्मा, यू इनकल्केटेड दैट क्वालिटीज एंड नाउ यू बिकम ब्राह्मण, राइट? नाउ फर्दर व्हाट, अब क्या, आफ्टर बिकमिंग अ ब्राह्मण व्हाट इज योर जर्नी? क्योंकि जब तक जीवन है तब तक तो कर्म ही करना है ना, हम मटेरियल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, आप यहाँ काम कर रहे हो, तो नाउ व्हाट इज योर जर्नी? यू आर गेटिंग अ वेरी वंडरफुल क्लास, कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, इट्स सो थ्रेटनिंग एंड सो डेंजरस। That threat attracts me to listen Dr. Sachin. कि कौन है मेरा, अब पहला जब मैंने वीडियो दिया तो एक ही वर्ड इनका था, मेरे फादर हमेशा कहते थे डॉक्टर शरीर मांस का लोथड़ा है, और उनके बाद आपके मुंह से सुना कि किस शरीर से प्यार करो जो मलमूत्र कीड़े से भरा पड़ा है। मैंने, ये मेरे फादर की कॉपी है, I admire only my father till my life and now next day. मुझे लगा यही मेरा इलाज उलाज, थोड़ा बीमार उमार पढ़ू तो कर सकते हैं, और कोई नहीं करने वाला है। एंड ही सो ब्लेस्ड, MBBS तो सबने कर रखा है, मेरे पास डॉक्टरों की कमी नहीं है, डॉक्टर्स मेरी कोर्ट में डेली आते हैं। मैं अपना शरीर तो बहुत दूर की बात है दिखाना और उनसे बात करना, मैं अपने क्लाइंटों को भी नहीं छूने देती हूँ, मैं कहती तुम लोगों ने तो बर्बाद कर दिया, जाइए आप अपना काम करिए। और उन सबों को मैं यहाँ का जो ज्ञान थोड़ा बहुत लिखी हूँ बताती हूँ, ऐसे ऐसे करो, ना हो तो चले जाओ, सब लोग वहाँ सुनो। तो वो जो है, बट ही इज ब्लेस्ड। क्यों ब्लेस्ड हैं? क्योंकि इन्होंने भी वही MBBS किया होगा, वही पढ़ाई करी। हालांकि एक लेक्चर में आप बोल रहे थे कि MBBS में भी जो है लोग लास्ट में पढ़ने आते हैं, बाकी दिन उन्हें बड़े इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं, वो मैंने लेक्चर सुना था। तो आई रियलाइज कि लग रहा है इन्होंने मेरी तरह जो है MBBS किया, जैसे मैंने लॉ किया है, एक एक चैप्टर पढ़ा है। सो आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि जहाँ तक पढ़ाई का, वो मिस्टेक होने वाला नहीं है, और क्राउन है ही एक बाबा का, तो यहाँ तो कुछ ना कुछ होगा। एंड आई रियलाइज, आप बिलीव नहीं करेंगे, आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग, मैं आपको बता रही हूँ कि जो अपनी ड्यूटी प्रॉपर कर रहे हैं वो कितना बाबा की ब्लेसिंग पा रहे हैं, उन्हें कहीं से क्रिटिसाइज नहीं होना है। डॉक्टर सचिन इज फिजिशियन, MS और MD और पता नहीं क्या क्या लोग मेडिकल में पढ़ लेते हैं, जैसे आई एम सिंपल, आई हैव कम्प्लीटेड माई मास्टर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, PhD कर रही थी पर PhD कम्प्लीट नहीं किया, पर ईश्वर ने मुझे बख्शा कि लोग रिटायरमेंट तक सोचते हैं केस मिल जाता है, अरे डेथ सेंटेंस कैसे दिया जाता है, कैसा होता है, हमको तो कोई फाइल ही नहीं। एंड आई वॉज सो शॉक्ड कि मुझे 12 साल की नौकरी में डेथ सेंटेंस की फाइल मिल गई और मुझे देना पड़ा, करना पड़ा, उसके लिए मुझे बहुत स्टडी करना पड़ा। 7 दिन मैंने खाना नहीं खाया था, खाली रात दिन पढ़ाई हो रही थी और प्लस ऊपर ईश्वर को याद। मैंने मम्मी को लास्ट डे बोला दो शब्द कि दो चीज़ें होंगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल था, तो मैंने बोला इधर ही विल टारगेट मी दैट फेलो जिसको मैं पनिश करने जा रही हूँ, या ये नौकरी जाएगी, तैयार रहना, ये दोनों में होगा। और डोंट वरी, मैं घर वापस नहीं आऊंगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। आई विल नॉट गो, आई एम नॉट गोइंग टू बिकम बर्डन ऑन एनीबॉडी, आई विल चूज माय पाथ। टिल सेंटेंस के बाद आई वाज अप्रिशिएटेड एट ऑल, क्योंकि वो केस ऐसा था, 5 मर्डर था, एक परिवार के 5 लड़कों को बिल्कुल ब्लंटली ब्रूटली चापड़ से काट दिया था उसने, और माँ बाप जिंदा थे और मदर को भी इंजर्ड थी, वो जिंदा थी, शी गेव द एविडेंस कि सब मेरे आंख के सामने हुआ है। तो मेरे को बार बार ये लगता था कि माँ को जिंदा क्यों रखा ईश्वर ने, ये ना होती तो शायद मेरे पास एक स्कोप था कि ठीक है किसी आई विटनेस नहीं, किसी ने देखा नहीं कुछ, इधर उधर वो बोल रही अपना उस पूरा शरीर मांस का लोथड़ा डॉक्टर सील करके बस ऐसे वो पड़ी रहती थी खाली, और वो कैसे जिंदा थी, क्यों जिंदा थी, शायद इस दिन के लिए। तो अब ये सब काम मुझे अकेले करना था, इवन माय डिस्ट्रिक्ट जज प्रेम भाई जो विजिट किए थे, मैंने कहा करना है क्या करके है, पुनः हमने तो कभी किया नहीं है, देख लो अपना, सब अपना देख लो। एक दो लॉर्डशिप को मैंने फोन किया, हॉनरे सुप्रीम कोर्ट में एक सर ऐसा केस आ गया क्या करूं, क्या है तो डेथ सेंटेंस का देखो। एक आध ने असिस्ट भी किया, 3 थे तो उसमें से मुझे एक ही को देना था जिसने डेलिबरेटली किया था, है ना, माफीनामा है, तो 2 डेलिबरेट नहीं था, वो एग्रेशन में साथ दे दिए थे। अब मुझे उसमें बाइफर्केट करना था एक ही एविडेंस से कि हु इज डेलिबरेट वन। अब वो मेरे सामने कुछ कोर्ट में ऐसा होता है भाई जी कि झूठ नहीं लोग बोल पाते हैं, बता देते हैं, खुद ही बताते हैं कि ऐसा हुआ है। अब मेरे पास सोचिए कितना मेरे लिए टफ होता होगा कि एक तो मैं ही उनसे सच बोलवाती हूँ और फिर उसके बाद उस सच के आधार पर मुझे निर्णय लेना होता है। समटाइम आई इन गिल्ट की मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था, अभी क्या सोचेगा कि इन्होंने मुझसे सच पूछा, अपनी सिंपैथी नहीं जताया, मैं नहीं जता सकती सिंपैथी, मैं क्या करूं, इट्स माय ड्यूटी। जिस दिन उससे मैंने पूछा तुमने क्यों ऐसा कि काटते चले गए, तो बोला कुछ हो गया मुझे, चलता चला गया। मैंने कहा चलो अब तो तुमने जो कहा, फिर ही बस कराएंगे, तो मैंने कहा अब जो किया है उसके लिए तैयार रहो। जब मैंने ये सेंटेंस बोला तब तक मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं इसको डेथ सेंटेंस देने जा रही हूं, तब तक मैंने ऐसे ही बोला, मैंने सोचा ठीक है तैयार रहो, लाइफ इंप्रिजनमेंट इज ऑल्सो वेरी सीरियस पनिशमेंट, पूरा जीवन आपको रहना है वहां। पर डेथ सेंटेंस में क्या होता है कि बेल नहीं होता है आपको पूरी, अगर कभी सपोज करिए रिटर्न भी जैसे होता था ना सुप्रीम कोर्ट से, तो वो आपको थ्रू आउट सड़ना तो जेल में ही है, तो डेथ सेंटेंस लोग अवॉइड करते हैं, लाइफ में कभी कब मैं बेल हो जाती है। तो मैंने उसको बोला, जिस दिन मुझे ये जजमेंट देना था उस दिन मैं नजर नहीं उठा पा रही थी अपनी, अंदर से कहीं से आ रहा था कि शायद मैंने पूछा ना होता इससे तो मैं आज ये नहीं करती, क्यों पूछा मैंने, लेकिन ये उनको कराना था हमारे माध्यम से, सब नहीं का आपको माध्यम बनाना था। और जिस तरह न्यूज बना पूरा, जिसकी वजह से ये लोग मिले मुझे, कि न्याय प्रशासन पे फिर से एक बार 20 साल बाद विश्वास हुआ, दिस वॉज द मार्जिनल नोट इन एवरी न्यूज पेपर एंड मीडिया एट ऑल। तो आई थॉट कि अच्छा, तो मैं इसलिए थी कि मैंने न्याय प्रशासन पे इतने लोगों का विश्वास कायम किया, एंड देन दैट पनिशमेंट वॉज वेरी मीगर, वो उसका अपना कर्मा था, मैंने एक बड़ा वर्क टारगेट कंप्लीट किया, तो आई वॉज नाउ रिलैक्स्ड कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, पूछा वो मेरी ड्यूटी थी। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपको जो ड्यूटी मिली है बहुत कंसंट्रेशन से, 3 वर्ड मेरे जीवन का 3 फंडा है, करेज करेज करेज, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन, लेट गो लेट गो लेट गो, साहस करिए जो मन में आए उसको करने का, फुल्ली एकाग्र होकर के करिए, अच्छा हुआ भूल जाइए, बुरा हुआ भूल जाइए, करना क्या है हमें, क्या होगा वर्स्ट केस में, क्या होगा, हम नहीं रहेंगे ना, तो जाना तो है ही एक दिन, लेटर और सूनर क्या फर्क पड़ता है, कोई हमें बहुत प्यार कर लेगा तो क्या मिलेगा और नहीं करेगा तो क्या मिलेगा। डू योर ड्यूटी डू योर ड्यूटी डू योर ड्यूटी, और आप सब पे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, प्लीज लिसन डॉक्टर सचिन वेरी केयरफुली, वॉट एवर ही इज सेइंग ही इज नॉट सेइंग हिज ओन, वो तो बहुत सेल्फिश आदमी है, वो तो अपना अध्यात्म में वो चाहे तो पहाड़ी पे अपना दिन रात बैठे नहीं, ये ड्यूटी उनको मिली है, अदरवाइज ही इज नॉट गोइंग टू वेस्ट अ सिंगल मिनट हियर, आई डेयर नॉट टू कॉल हिम एट ऑल, क्योंकि मुझे लगता है कि ना तो मैं उन्हें डिस्टर्ब कर सकती हूँ ना कुछ। तो आप तो कितने, आपके साथ तो हंसते भी हैं बैठ करके, नहीं आप इनसे बात अदरवाइज कर, वो हंसते जानते हैं क्यों, आपका अटेंशन लेने के कि आप सीरियसली सुनो, जिस दिन नहीं सुनोगे उस दिन ही वुड बी द फर्स्ट पर्सन हु विल किक आउट यू। तो आप अगर चाहते हो तो उनको आप समझो कि ईश्वर उनके माध्यम से बुलवा रहा है, प्लीज फॉलो, क्योंकि मेनी पीपल आर कमिंग हियर टू फॉलो यू। और आपकी अगर थोड़ी भी कहीं कुछ मिला ना, तो जो एक बात वो बोलते हैं कोई ज्ञान में आने वाला था और आपकी वजह से चला गया, दैट वुड बी द वेरी बैड कर्मा और पीपल विल गो आउट, क्योंकि आप वो एग्जाम्पल हो ना। अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बनाओ कि यस देयर व्हाई आई एक्सपीरियंस की ब्लेसिंग ही इनके MBBS तो बहुत सारे हैं, पर MBBS के साथ बाबा का ब्लेसिंग डबल ट्रिपल जने कितना MBBS MD सब है, बाबा के ब्लेसिंग से सब चल रहा है। तो आप वो ब्लेसिंग को लूज मत करिए प्लीज। आप सबको यहाँ मिल रहा है, यहाँ से आध्यात्मिक की जर्नी बहुत आसान है। मुझे तो वहाँ नेचर भी बनाना है, प्रकृति बनाएं, सात्विक भोजन बनाएं, कुछ एक दो ऐसे लोग ढूंढे फोन उन पर बात करने के लिए कभी कभार, तब तो जर्नी बने। आपको तो सब बना बनाया मिला है। सुनिए और जाके सीधे पहाड़ी पे बैठ जाइए। थैंक यू सो मच। ओम शांति।